તારીખ 11/3/1995, શહીદ રવિદ્રષ્ટિ પ્રકાશ, બોલ નંબર 14, 22, 30, 34, 37, 38, 39 અને 39 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 261.
દ્રષ્ટિ પ્રકાશ પાનો 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, ज्ञान का विषय दृष्टि के विषय का प्रयोजन साधने जितना ही लक्ष्य में लेना ठीक है, बाकी उसका प्रयोजन नहीं है। एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है यहाँ पर कि दृष्टि का विषय निज परमात्म द्रव्य है और वही प्रयोजन भूत तत्व है। आश्रय लेने के लिए, अवलंबन लेने के लिए प्रयोजन भूत तत्व तो अपना त्रिकाली परमात्मा स्वरूप है, शाश्वत जो परमात्मा स्वरूप है वही है। तो ज्ञान का विषय तो और भी तो है, ज्ञान में वो जानने में आता है और दूसरी दूसरी बातें भी ज्ञान में आती हैं, अनेक प्रकार के नए, अनेक प्रकार के न्याय और भी कहीं जो भी जितनी लंबी थोड़ी बात ज्ञान के माध्यम से आती है। तो उसमें से दृष्टि का विषयभूत जो आत्म तत्व है उसका विशेष रूप से आश्रय दृढ़ हो उतना प्रयोजन साध लेना, और उतना प्रयोजन ही साथ करके बाकी की बातों को गौण करके छोड़ दो, ऐसा एक मार्गदर्शन है। ब्रैकेट में थोड़ा स्पष्टीकरण दिया है, प्रयोजन भूत स्वरूप के अलावा जानने में आते हुए सभी ज्ञेयों में ज्ञान की अपना ज्ञान को अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता। एक अपना स्वरूप के अलावा जितने भी दूसरी दूसरी बातें हैं उसमें अपना प्रयोजन सम्यक ज्ञान को भाषित नहीं होता। जो ज्ञान सम्यक है वो दृष्टि का विषय जो प्रयोजन भूत तत्व है उसको साधने जितना ही उस विषय को लक्ष्य में लेता है, इससे ज्यादा जितना भी विषय है उसको गौण करके छोड़ देता है, अपना प्रयोजन नहीं है ऐसा जान करके। इस तरह से जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति में कहीं भी नुकसान नहीं होता, और सम्यक ज्ञान इसलिए नुकसान नहीं करता, सम्यक ज्ञान में सहज ऐसा ही होता है, क्योंकि श्रद्धा की पकड़ स्वरूप पर उतनी है कि ज्ञान का खिंचाव भी यहाँ ही रहता है, ज्ञान की मुख्यता भी यहाँ ही रहती है। इसलिए इसको छोड़ करके जितना विषय है उसको ज्ञान से गौण कर देता है या अपना प्रयोजन नहीं ऐसा उसमें भाषित हो जाता है। उस स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है कि अप्रयोजन भूत विषय में भी ज्ञान जाता है और जो साधने योग्य अपना स्वरूप है उसके कभी कभी जाने अनजाने में गौणता हो जाती है। यही कारण से वो बात लिया है कि ज्ञान का विषय कितना लक्ष्य में लेना कि जितना दृष्टि का विषय का प्रयोजन साधने में आवे उतना ही लक्ष्य में लेना, इससे ज्यादा बात है उसको छोड़ देना है। ये मार्गदर्शन ज्ञान की प्रधानता के हिसाब में अच्छा आया है। 22 नंबर का वचनामृत है, 81 पाने पर। सहज पुरुषार्थ के विषय में चर्चा दरमियान ऐसा कहा कि पुरुषार्थ करूं यह बात भी नहीं है। सहज पुरुषार्थ का ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि जिसमें करूं ऐसे परिणाम चले, ऐसे विकल्प चले, वो विकल्प सहज पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। पुरुषार्थ करूं ये पुरुषार्थ का सहज स्वरूप नहीं है। मैं वर्तमान में ही अनंत पुरुषार्थ का पिंड हूँ, वो उत्तरण चिन्ह में लिया है। स्व आश्रय भाव कैसे होता है? स्वरूप का आश्रय करने वाला परिणाम निर्विकल्प परिणाम, बोलने में विकल्प पूर्वक बोला जाएगा लेकिन भाव लेना ये निर्विकल्प परिणाम का, कि मैं वर्तमान में ही अनंत पुरुषार्थ का पिंड हूँ, ऐसे स्वाश्रय में पर्याय द्रव की ओर ढल जाती है और वेग पूर्वक वो ढल जाती है। इसलिए उपदेश में पर्याय की मुख्यता की अपेक्षा से लेकर के पुरुषार्थ करने का कथन है। ऐसा कथन आएगा उपदेश में, क्योंकि उपदेश में पर्याय की प्रधानता हमेशा रहती है। उपदेश बोध में पर्याय की प्रधानता रहती है, तो उपदेश बोध में ये बात आएगी कि पुरुषार्थ करना चाहिए, अवश्य पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर भी पुरुषार्थ सहज होता है, स्वरूप के आश्रय से पुरुषार्थ सहज चलता है। पुरुषार्थ है वो एक आवेग पूर्ण पर्याय है, जिसमें जोर है, जोश है। तो स्वाश्रय भाव में अपना अनंत सामर्थ्य जिस ज्ञान गोचर होता है, तो पुरुषार्थ सहज जोर से अंदर से उठ जाता है, आ जाता है। वो सम्यक पुरुषार्थ है और वो सही पुरुषार्थ है। बाकी करूं पुरुषार्थ करूं ये विकल्प पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। ये पुरुषार्थ के विषय में स्पष्टीकरण दिया है वहां। नंबर का वो श्रद्धा प्रधान बात किया है। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, कृतकृत्य हूँ, मुझे कुछ करना धरना ही नहीं है। अपना स्वरूप जो श्रद्धान का विषय होता है, दृष्टि का विषय है, वो हर वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ ऐसा आता है। कृतकृत्य हूँ, मैंने जो कुछ करने लायक है वो बाकी नहीं है उसमें कुछ, वो तो है ही शुरू से उसमें। और मुझे कुछ करना धरना, मेरे स्वरूप में मुझे कुछ करना धरना नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि से ही परिपूर्ण है। ऐसी दृष्टि होने पर, ऐसी श्रद्धा, दृष्टि माने श्रद्धा, ऐसी दृष्टि होने पर परिणाम में आनंद का अंश प्रकट होता है। ऐसी दृष्टि होते ही परिणाम में आनंद का अंश प्रकट होता है और वो आनंद बढ़ते बढ़ते ही पूर्णता हो जाती है। सहज रूप में पहले दृष्टि होनी चाहिए, फिर वो दृष्टि का जो परिणमन है वो प्रति समय चालू रहता है। तो जैसे कोई औषधि को पुट दिया जाता है, ये अभ्रक भस्म देते हैं ना, तो क्षय रोग में अभ्रक भस्म खिलाई जाती है। तो अभ्रक तो अभ्रक है, उसको जला देते हैं और जलाते हैं और जलाते हैं, 1000 बार जलाते हैं, उसको सहस्त्रपुटी कहते हैं अभ्रक भस्म। ऐसे श्रद्धान का परिणमन प्रति समय जो चालू रहता है, उसका पुट लगता है, परिणमन में उसका पुट लगता है, तो जो आनंद आया वो बढ़ते बढ़ते पूर्णता हो जाएगी, क्योंकि श्रद्धान का पुट लगना चालू है अवस्था में, वो कार्य चालू है। विषय बदलता नहीं, कार्य पद्धति भी बदलती नहीं, और तो परिणमन है वो शुद्ध होते होते पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, आनंद भी पूर्ण हो जाएगा, सभी गुण पूर्ण हो जाएगा। ये श्रद्धान का परिणमन और श्रद्धान का विषय दो बात बराबर अंदर में आ जाए तो परिणाम का कर्तृत्व का बोझ हट जाएगा, और सब बात सहज समझ में आ जाएगी। शास्त्र के अनेक प्रकार के कथन की कहाँ कहाँ कैसी मर्यादा है वो सहज समझ में आ जाएगी, अगर श्रद्धान ठीक है तो। उतना एक श्रद्धान होने पर जो ज्ञान खिलता है, जो ज्ञान उघड़ता है, इसमें एक वचनामृत है, वो ज्ञान सभी बातों की मर्यादा को अपेक्षा को समझ लेता है कि यहाँ ये कहने का अभिप्राय है, यहाँ इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है, वहाँ ये दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसा श्रद्धान पूर्वक जो ज्ञान उघड़ता है, खुलता है, उसमें वो बात ऐसे स्पष्ट हो जाती है। क्यों कि जिन्होंने शास्त्र लिखा वो सब लिखने वालों ने उस दृष्टि के परिणमन होते होते लिखा है, इसलिए उसकी जो शैली है, कहने के पीछे जो मोटिव होता है, अभिप्राय होता है, वो जिसको दृष्टि बराबर है उसको सही रूप में समझ में आ जाता है। श्रद्धा कैसे मालूम पड़े? हाँ, श्रद्धा जो है वो निर्विकल्प स्वानुभव के काल में ही ठीक होती है, वो मिथ्यात्व छूट करके सम्यक श्रद्धा में जो सम्यक्त्व होता है वो स्वानुभव के काल में होता है। इसके पहले मुमुक्षु को मिथ्यात्व मंद होता है, इसको अधिक मंद होता है, इसको अति मंद होता है, लेकिन है वो मिथ्यात्व, सम्यक्त्व बोला नहीं जाता, और सम्यक्त्व स्वानुभव के काल में ही उत्पन्न हो जाता है। तो जिसको स्वानुभव हुआ उसको ऑटोमेटिक सम्यक्त्व हो गया, सम्यक श्रद्धा हो गई, और सम्यक श्रद्धा का जो भी लक्षण है वो तो समझ में आ जाता है। जैसे ये बात अपने चली कृपालु देव के वचनामृत से, तो उस तरह से वो चली बात कि केवल ज्ञान श्रद्धा से हुआ है, श्रद्धा से समझे तो केवल ज्ञान तो हुआ है, केवल ज्ञान होने का बाकी नहीं है, हमको हुआ है ऐसा लिया है, तो ये श्रद्धा के परिणमन को सूचित करता है कि श्रद्धा कैसे केवल ज्ञान को अपना विषय बना लेती है, केवल ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है उनको कैसे विषय बना लेती है, कि उस रूप हम है ऐसा अपना अस्तित्व में श्रद्धा प्रसर जाती है। जैसे अपन दृष्टांत लेते हैं कि ये किधर बॉम्ब रखा है, इधर बॉम्ब रखा गया है, तो ये जगह खाली कर दो, ये मकान खाली कर दो, कोई भी मकान में ये बात आई तो जिसको विश्वास आ गया उसने तो कोई अधूरा विश्वास नहीं आता, वो अपना जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ऐसा श्रद्धा का विषय है वो वर्तमान में परिपूर्णता की मौजूदगी को इतना अभेद रूप से श्रद्धान्वित कर लेता है कि उसमें फिर होने बोने की बात नहीं रहती, हो ही गया समझो। ऐसे कई प्रकार की जो बातें हैं जो श्रद्धान को प्रदर्शित करती है उसे समझ में आ जाता है। तो यहाँ कहने वाला समीर दृष्टि की है, उसका पता जिसको उस लाइन की बराबर समझ है उसको पता चल जाता है कि कहने वाला बिना श्रद्धा ये बात कह नहीं सकता। तो पद्धति कोई ऐसी है कि बिना परिणमन आ ही नहीं सकते, इसमें दूसरी सब बातों में नकल चलती है। एक श्रद्धान का विषय ऐसा है, ऐसे कई विद्वान लोग उपदेशक उपदेश देते हैं, लेकिन श्रद्धा का जो विषय है इस विषय में जो उपदेश है वो बिना परिणमन संभव नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक खास प्रकार है, अलग सा प्रकार है जिसमें उपदेश बोध का अनुसंधान रहता है और पर्याय का निषेध आता है, फिर भी उपदेश बोध का अनुसंधान रह जाता है। इसलिए कहीं एकांत नहीं होता है, निश्चयाभास नहीं होता है, एक विशेषता है इस बात की। वो तो क्या है कि वो तो उस लाइन में आए बिना तो कहाँ से समझ आएंगे। हाँ और क्या, वो क्या है कि फिर कहीं भी ऐसी बात आए तो समझ में आ जानी चाहिए ना। कोई बात समझाई जाती है और समझ में आती है वो अलग बात है, और कोई बात अंदर से आती है समझ में वो अलग होती है ना। दोनों बात अलग होती है। कोई समझाने से समझता है वो एक सूक्ष्म में शक्ति है समझने की, इसलिए बात की धारणा होती है, और अंदर से आती है वो तो परिणमन को लेकर के आती है, वो बात अलग हो जाती है। तो उसमें स्वीकार होता है लेकिन ऊपर ऊपर का है, पहचान पूर्व का होता है तो हर जगह वो बात को पकड़ सकते हैं। जैसे भव मोक्षेपण शुद्ध वर्ते संभाव, जो वहां भी समझ में आ जाता कि वो श्रद्धान की बात किया है, ऐसे कहीं भी हो वो समझ में आ जाता है, क्योंकि खुद का उतना निर्मलता, खुद की इतनी निर्मलता होती है तो बात समझ में आती है। तो निर्मलता जरूरी है, उस हद की निर्मलता जरूरी है। परिणमन में तो एक ही तरीका है कि जैसे जैसे दर्शन भोग का अनुभाग टूटेगा घटेगा उतनी निर्मलता आएगी और उतना काम होगा। तो उसमें तो जो दर्शन मोह का अनुभाग टूटने की लाइन चौकआउट किया है उसी लाइन पर आगे बढ़ना पड़ेगा। मार्ग तो दो नहीं है, कार्य पद्धति दो नहीं है, एक ही कार्य पद्धति है। फिर उस कार्य पद्धति में आने से ये असमाधान नहीं रहता, और उस कार्य पद्धति को अंदर से स्वीकार नहीं होता है तो मुमुक्षु को अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, और क्या करे, दूसरा क्या करे, और कोई दूसरा प्रकार है कि नहीं है। तो मूल लाइन में वो खुद ज्वाइन नहीं होता है तो उधर उधर माथा लगाना चालू हो जाता है जो करने लायक नहीं है। इसलिए प्रयोजन की दृष्टि वाले को तो बराबर प्रयोजन को पकड़ करके जो लाइन है उस लाइन में शामिल हो जाना चाहिए, काम फिर वो कोई असमाधान फिर उठने का सवाल नहीं होगा, यहाँ कैसे करे वहाँ कैसे करे वो बात नहीं है। तो बात तो होती है कि अनेक प्रकार के जो दूषित परिणाम होते हैं तो उसको कैसे मिटाएं, इसको कैसे मिटाएं, उसको कैसे मिटाएं, ऐसी बात अलग अलग प्रकार से जैसे कोई काम करना हो ऐसा असमाधान रहता है। वास्तव में काम करने की पद्धति एक ही है, दो पद्धति नहीं है, अनेक तो नहीं है, दो भी नहीं है। तो उस पर बराबर अपने को प्रयास करके उस लाइन में आ जाना है। एक असमाधान प्रसंग नहीं आएगा। चौतीस नंबर का वचनामृत है, उसमें अपने परिणमन की स्थिति बताई है और वो भी शुभ अशुभ परिणाम खुद को होते हैं उस विषय में स्पष्टीकरण दिया है अपने परिणमन का। और शुभ परिणाम के काल में इस ओर का झुकाव मंद होता है। तो इस ओर का मैंने झुकाव का मतलब क्या कि अशुभ परिणाम के काल में स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ का झुकाव मंद होता है। जब पुरुषार्थ तीव्र होता है तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग हो जाता है, पुरुषार्थ मंद होता है तो शुभोपयोग होता है, और पुरुषार्थ मंद होता है तो अशुभ उपयोग भी होता है ज्ञान दशा में। तो अपने परिणमन बताते हुए कहते हैं कि अशुभ परिणाम के काल में इस ओर का मैंने स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ का झुकाव मंद होता है, और शुभ परिणाम के काल में इस ओर का थोड़ा ज्यादा झुकाव होता है शुभ परिणाम के काल में, परंतु दोनों प्रकार के परिणामों के काल में दृष्टि का झुकाव तो वैसा का वैसा ही है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझने लायक है, पुरुषार्थ में कमी बेसी होती है, दृष्टि में कमी बेसी नहीं होती है, श्रद्धान में कमी बेसी नहीं होती, कभी श्रद्धान मंद हुआ या श्रद्धान तीव्र हुआ वो बात नहीं है। चाहे परिणाम शुभ हो चाहे परिणाम में अशुभ हो, जो श्रद्धा जो द्रव्य दृष्टि प्रकट हो गई वो तो वैसी के वैसी रहती है, शुद्ध उपयोग में भी ऐसी है, शुभोपयोग में भी ऐसी है, और शुद्धोपयोग में भी ऐसी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दृष्टि का झुकाव तो वैसा का वैसा ही है। लड़ाई के काल में बाहर लड़ाई की क्रिया होती है और राग में अशुभ राग की क्रिया होती है, पर मैं तो मेरे में ही अचल रहता हूँ, मेरे में तो उस समय भी राग की क्रिया का अभाव है। वो श्रद्धा का विषय इस तरह से चलता है, श्रद्धा का परिणमन इस तरह से चलता है कि अशुभ राग की क्रिया होती है, बाहर में शरीर आदि की क्रिया होती है, और मैं तो, और ज्ञान में भी ऐसा ही भाषित होता है, ऐसा ही लगता है। ज्ञान के विषय से दूसरी बात कही, श्रद्धा में तो दूसरी बात भी नहीं है, श्रद्धा में तो एक अपना स्वरूप है जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है, बाहर के परिणाम का भी नहीं, शुभ अशुभ का, और बाहर के पदार्थों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 37-38 में दृष्टि और चारित्र के विषय में स्पष्टीकरण आया है कि द्रव्य दृष्टि में दृष्टि द्रव्य में तादात्म्य हो जाने पर भी चारित्र परिणति कुछ च्युत होकर के पर की ओर चली जाती है। तो अभी स्वरूपाचरण की च्युति नहीं होती, तो इससे ज्यादा आगे नहीं जाती। दृष्टि तो पूरी की पूरी द्रव्य में तदात्म हो गई, लेकिन चारित्र गुण का परिणमन ऐसा है कि वो क्रमशः आगे बढ़ता बढ़ता 12वें गुण स्थान में पूर्ण होता है। चतुर्थ गुण स्थान में तो उसकी शुरुआत होती है, लेकिन 12वें गुण स्थान में इसकी जो पूर्णता होती है तो वो क्रमशः पूर्ण होने का इसका स्वभाव है। परिणमन करने का स्वभाव ही ऐसा है कि वो क्रमशः पूर्ण करेगा। तो वो आत्मा में से च्युत होकर के आचरण के परिणाम चारित्र गुण के परिणाम बाहर जाएगा, लेकिन स्वरूपाचरण का उसको छोड़ करके पूरा पूरा बाहर नहीं जाएगा। चारित्र गुण के एक अंश स्वरूपाचरण रूप होकर के स्वरूप स्थिरता में लगा रहेगा और कुछ एक अंश जो है उचित होकर के बाहर जाएगा। अब उसकी विशेष स्पष्टता करते हुए 38 में कहते हैं कि स्वरूप की दृष्टि होने पर भी चारित्र गुण की योग्यता ही ऐसी होने से चारित्र गुण पूरा शुद्ध नहीं परिणम जाता। उसकी योग्यता परिणमन करने की योग्यता ऐसी है तो दृष्टि के साथ पूरा पूरा परिणमन कभी नहीं करता, अधूरा ही परिणमन करता है। श्रद्धा गुण का स्वभाव ऐसा है कि एक ही क्षण में द्रव्य में पूरा का पूरा व्याप्त हो जाता है। श्रद्धा गुण का ऐसा स्वभाव है, जबकि चारित्र गुण का ऐसा स्वभाव नहीं है। वो गुण का ही ऐसा स्वभाव है, दोनों का अपना अपना। उसमें ऐसा क्यों वो सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो स्वभाव से ही ऐसे गुण है दोनों। चारित्र गुण का स्वभाव ऐसा है कि वह क्रम क्रम से ही पूरा होता है सभी को, किसी भी जीव को। ऐसे दोनों गुणों के स्वभाव ही अलग अलग है, दोनों गुणों के स्वभाव ही अपना अपना है और अपने स्वभाव अनुसार वो कार्य करेगा। इसलिए दृष्टि होते ही लोगों को ये प्रश्न होता है कि जब श्रद्धा हो गई तो फिर आचरण क्यों ऐसा नहीं है, जैसे श्रद्धा है ऐसा ज्ञानी का आचरण क्यों नहीं है। ऐसा आचरण साधक दशा में होता ही नहीं। अगर आचरण ऐसा हो जाता है तो सिद्ध दशा हो जाती है। कई लोग का ये एक भ्रम है कि जैसा हम जाने माने ऐसा ही हमारा आचरण होना चाहिए। साधक को कभी नहीं होता, आचरण अधूरा होता है, उसका नाम साधक दशा है। पूर्ण आचरण हो जाए तो सिद्ध दशा हो जाती है, और बिल्कुल आचरण नहीं है तो वो अज्ञान दशा है। कुछ अंश में है, कुछ अंश में नहीं है, अधूरा परिणमन करके वो क्रम से ही पूर्ण होने का उसका स्वभाव है। चारित्र गुण में आते हैं 39 में दिया है कि जब दृष्टि अपने स्वरूप में तादात्म्य होती है तो थोड़े काल तक राग आता है, आता तो है थोड़े काल, मैंने जहां तक साधक दशा है वहां तक राग आएगा, पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक। लेकिन वह राग लंगड़ा हो जाता है। क्या लंगड़े को एक थोड़ा सा भी धक्का लग जाए ना, असाता के उदय में सम्यक दृष्टि को दुख का वेदन होता है, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है। बिल्कुल दुख नहीं होता है वो बात नहीं, और पूरा वो पीड़ा के दुख में एकाकार हो जाता है वो बात भी नहीं है। अपने स्वभाव सुख स्वभाव की अधिकता, स्वभाव में तो सुख भरा है और सुख वेदन में आता है, तो अपने स्वभाव सुख की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है, सम्यक दृष्टि को दुख की गौणता हो जाती है। नान ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है, परंतु वह वेदन मुख्य नहीं होता, आता है लेकिन गौण रूप से रहता है। ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, अपने स्वभाव की अधिकता कभी नहीं छूटती। क्यों? कि स्वभाव इतना महान है, इससे महान बढ़कर के तो कोई होते नहीं, कोई है ही नहीं, इसलिए स्वभाव की जो अधिकता है वो छूटने का सवाल नहीं रहता। उनसठ नंबर का वचनामृत है, अनंत तीर्थंकर हो गए लेकिन अपने तो गुरुदेव श्री ही सबसे अधिक है। कैसी गुरु की भक्ति आती है, इसका ये वचनामृत है कि अनंत तीर्थंकर हो गए लेकिन अपने तो गुरुदेव श्री ही सबसे अधिक है। ये प्रत्यक्ष सदगुरु समन ही परोक्ष जिन उपकार, ये जो कृपालु देव ने लिखा है वही परिणमन रूप से यहाँ बात आई है। ऐसा ही परिणमन होता है, जैसे कि दृष्टांत दिया है, अपने को धन की जरूरत हो और कोई लखपति अपनी जरूरत अनुसार धन दे देवे, तो वह लखपति अपने लिए तो अन्य करोड़पतियों से भी अधिक है, क्योंकि जरूरत हुई वो लखपति ने धन दे दिया और खुद करोड़पति बन गया, तो वो लखपति दूसरे करोड़पतियों से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? कि हमारे काम का तो थे नहीं वो, हमारे काम का तो वो आदमी आया, इसलिए हमको तो सबसे अधिक इसकी निश्चितता है। वो जितना प्रैक्टिकल है, कोई तो दूसरा से हमारा क्या वास्ता, कोई तो दूसरे अनेक करोड़पति हो जगत में, हमें क्या लेना देना है? हमने तो उसको खरी जरूरत थी तब मदद किया तो हम करोड़पति बन गए। ऐसे अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत ज्ञानी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जिस गुरु से ज्ञान मिला बात खत्म, वो सबसे अधिक है मेरे लिए, क्योंकि वो इनकी प्रत्यक्षता में उसको जो लाभ मिलना चाहिए था वो तो श्रद्धान की अपेक्षा से वो खुद ही सिद्ध हो गया, क्योंकि अपना स्वरूप तो सिद्ध पद है, तो ऐसा श्रद्धान हुआ तो खुद सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने लगा। मैं सिद्ध स्वरूप हूँ ऐसा साक्षात अनुभव आता है, इतना लाभ जिसको हुआ तो बात इतनी बन गई कि दूसरा लाभ, दूसरे से तो इतना लाभ हुआ नहीं, इसलिए मेरे लिए तो ये सबसे अधिक है। ऐसे ही श्री गुरुदेव श्री अपने लिए तो तीर्थंकर से भी अधिक है। अपना हित तो इनसे हुआ है, इनसे अपना हित हुआ, इनके निमित्त से तो बात सबसे आगे उनकी आ जाएगी, ये बहुत स्वाभाविक है। फिर शास्त्र पढ़ने वाले के लिए 61 नंबर में लिखते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने शास्त्र पढ़ते समय ऐसा कहा कि जैसे व्यापार में बही के पन्ने फेरते हैं वैसे ही ये शास्त्र के पन्ने हैं, कोई फर्क नहीं। यदि इधर की दृष्टि नहीं हुई तो दोनों समान हैं। आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई तो दुकान पर जाकर के वही के पन्ने फेरते हो और इधर स्वाध्याय हॉल में आकर के शास्त्र के पन्ने फेरते हो, दोनों में क्या फर्क होगा? उपयोग को ज्ञान का व्यापार बोला जाता है। वहां दुकान पर अशुभ उपयोग था, यहाँ शुभ उपयोग हुआ है, पर शुभ अशुभ की जाति में तो कोई फर्क नहीं, जाति अपेक्षा से फर्क नहीं। कसाई की तारतम्यता में तीव्र मंदता का फर्क है, लेकिन जाति तो दोनों में कसाई की ही है। इसलिए अगर दृष्टि नहीं हुई तो शास्त्र पढ़ना उतनी वही बात, वहां एक दुकान बंद करके दूसरी दुकान में आ गया, तो लिखा कि एक दुकान बंद कर दिया मैंने, अशुभ का व्यापार छोड़ दिया, दूसरी दुकान चालू कर दिया शुभ का व्यापार, तो दुकानदारी तो चालू रहेगी ना, दुकान व्यापार तो बंद हुआ ही नहीं। एक 65 नंबर का उसके नाम रख लिया, थोड़ा अज्ञात भी रखा। अनुभव के लिए विचार मनन घूटन रहना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न उठाया है। हमको आत्मानुभव करना है तो कहा विचार चिंतन मनन आत्मा का करते रहे क्या? उत्तर, पर्याय में बैठकर घूंटन मुनन करने मनन करने में पर्याय में ठीक पड़ा यानी संतोष रहता है। पर्याय में बैठकर मैंने पर्याय में मैं पड़ा रख करके, अर्थात पर्याय में अस्तित्व की स्थापना करके जो घूंटन करता है कि मैंने घूंटन किया, मैंने मनन किया, मैंने चिंतन किया, तो मैं पड़ा तो रखा पर्याय में, वो तो पद्धति बराबर नहीं है। और द्रव्य में बैठने से यानी कि द्रव्य में अस्तित्व स्थापित करने से घूटन मनन तो सहज होता है, करना पड़ता नहीं, इसे चालू रहता है और घूटन आदि में जोर नहीं आता। फिर भी चिंतन मनन घूटन होगा, फिर भी उस पर वजन नहीं होगा। ये श्रद्धान का विषय वाले की बात है, ऐसे उपदेश में तो ऐसा आएगा कि आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का घूटन करो। द्रव्य दृष्टि वाले ऐसा कहेंगे कि ये तो होता है, जब दृष्टि द्रव्य पर आ गई तो आत्मा का चिंतन मनन घूटन चलता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा, और वही सही है, यही सही है, क्योंकि वरना पर्याय पर जोर जाएगा, मैंने इतना किया उतना किया मैं ये करता हूं। जोर तो इधर का रहता है, मैंने अंतर तत्व का रहता है, पर्याय में बैठकर घूटन आदि करने से अंदर में नहीं आ सकते। पर्याय में जोर दे करके द्रव्य का चिंतन करेगा लेकिन द्रव्य के सन्मुख होकर के द्रव्य में लीनता नहीं होगी, क्यों कि जोर विरुद्ध दिशा में चलता है। चिंतन द्रव्य का करता है और वजन आता है पर्याय पर, तो बात उल्टी सुलटी होगी। तो चिंतन भी दो तरह का होता है, एक द्रव्य पर वजन रहता है उनको चिंतन सहज चलता है, वो यथार्थ है। जिसको द्रव्य का लक्ष्य नहीं, द्रव्य की मुख्यता नहीं और द्रव्य का चिंतन करता है, उसको वजन जोर रहता है पर्याय में, चिंतन पर जोर रहता है, वो चिंतन यथार्थ नहीं है। भले ही द्रव्य का चिंतन करता हो, वो यथार्थ चिंतन नहीं है। इस तरह से कार्य पद्धति में दृष्टि के कारण से क्या फर्क पड़ता है, आत्मा का चिंतन मनन, वो तो चिंतन मनन है लेकिन दृष्टि अलग है, तो उसका प्रकार अलग है, एक यथार्थ है एक अयथार्थ है। ऐसे अनेक प्रकार से कहीं पढ़ते से ये बात यहाँ चली है। प्रश्न है आप गई काले जो श्रद्धा ने ज्ञान बाबत ऊंडाण थी विवेचन कर, એમાં મને લાગે છે કે તમે જ્ઞાન પક્ષે અન્યાય કર્યો છે। એ ખરું છે કે જીવ શ્રદ્ધાના બળે નિર્મળ ભાવોની અસીમ દુનિયામાં વિહાર કરી શકે છે અને તેનો આનંદ પણ અનુભવી શકે છે, પરંતુ તેમાં તો ઉતાર ચઢાવ થાય છે, તેથી તે ભાવોની મસ્તી હતી તેવું લાગે છે। જ્યારે જ્ઞાનમાં સ્થિરતાનો અનુભવ થાય છે, નક્કરતાની પ્રાપ્તિનો આનંદ અનુભવાય છે, તેમાં ઘટાડો થવાની કોઈ શક્યતા જ નથી। આમ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન ભલે બંને આત્માના જ ગુણ છે અને શ્રદ્ધા ભલે જ્ઞાનથી આગળ ચાલતી હોય, પરંતુ પૂર્ણતાના પ્રયાણ તરફ અનુભવજન્ય જ્ઞાનથી જ આગળ વધી શકાય તેવું જણાય છે। પણ એમાં શું છે કે જ્ઞાન એક ગુણ છે, શ્રદ્ધા પણ એક ગુણ છે, બંનેમાં બળવાન કોણ છે એનો વિચાર કરીએ તો કે શ્રદ્ધા પૂર્ણ શુદ્ધ થઈને પરિણમે છે અને જ્ઞાન અધૂરું શુદ્ધ થઈને અધૂરું પરિણમે છે, એટલે શ્રદ્ધાની શક્તિ વધી જાય છે મોક્ષ માર્ગમાં। મોક્ષ માર્ગમાં સાધક શ્રદ્ધાને બળે કેમ આગળ વધે છે કે શ્રદ્ધાની પૂરી શક્તિથી પરિણમન ચાલે છે, જ્યારે જ્ઞાનની અધૂરી શક્તિથી પરિણમન ચાલે છે, એટલે જ્ઞાન બળ કરતાં શ્રદ્ધાનું બળ વધારે છે એમ છે ખરેખર। એટલે શ્રદ્ધાની પ્રધાનતા મોક્ષ માર્ગની અંદર ગણવામાં આવી છે અને બીજી બેંસરીનું તો એક વચનામૃત છે કે સાધક શ્રદ્ધાના બળે જ આગળ વધે છે, કેમ કે જ્ઞાન છે એનો વિષય તો વહેંચાયેલો છે, શ્રદ્ધાને એકલો આત્મા પોતે જ વિષય થાય છે એટલે એનું બળ પણ ઘણું છે। ત્યારે જ્ઞાનના વિષયમાં આત્મા પણ છે, પર્યાય પણ છે અને અનાત્મા પણ છે, બધાને જ્ઞાન જાણે છે, એવી રીતે જ્ઞાનની શક્તિ વહેંચાઈ લીધી છે। માટે એટલું જ્ઞાન બળ નથી જેટલું શ્રદ્ધાનું બળ છે એમ વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી અને એ રીતે વૈજ્ઞાનિક પરિણામો હોવાથી શ્રદ્ધાના બળે આગળ વધે છે।